نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أصحابه وبارك وسلم أما
کسی بھی دنیاوی اعتبار سے بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. ظاہر دنیا جو ہے اسباب پر چلتی ہے اور اس اسباب کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے پانے کے لیے وہ ہے شوق اور اشتیاق. جذبہ انسان میں ہو, شوق ہو, اشتیاق ہو اس چیز کا کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے, یہ ہوتا ہے جذبہ اشتیاق اس کو کہتے ہیں. جتنا یہ زیادہ ہوگا اسی قدر اس منزل کے قریب انسان جائے گا. ایک سب سے بڑا سبب ہے کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا قاعدہ یہی آپ دیکھ لیں. بے شوق انسان جو ہے خیالات تو مارتا رہتا ہے, جہاں جی ہوا جی خطرنا خیالی پلاؤ بنانا, لیکن شوق ہے نہیں اس میں. سنی سنائی لوگوں باتوں میں کرتا ہے, اپنا شوق تو ہے نہیں, وہ پیچھے ہی رہتا ہے بیچارہ, منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو ایک انسان کتنے کمزور اور بڑا مشکل دشوار گن ہو اس کے لیے اس جگہ پر پہنچنا, لیکن شوق رکھتا ہو تو ان شاء اللہ منزل پا جاتا ہے. مثال دیتے ہیں اس کی آپ کو, بھائی کس طرح انسان شوق کے ساتھ جو ہے پہنچ جاتا ہے. شوق پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ چیز تو چاہیے نا, اس کے لیے بھی اسباب چاہیے کہ شوق کیسے پیدا ہو آدمی کسی چیز میں, کس طرح سے جذبہ پیدا ہو, اس کی کیا اسباب ہیں, کیسے ہو. ایک آدمی اس چیز کا شوق نہیں ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا, تو اس کو کیسے ڈیولپ کرے گا, بند کرے آدمی, سمجھے نا میری بات. تو اس کی مثال یہ ہے, میں ایک دے دوں آپ کو کہ بھائی میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور اس کتاب کے اندر میں دیکھتا ہوں جی فلاں شہر جو ہے, فلاں ملک بڑا خوبصورت ہے, وہاں پہاڑ ہیں, آبشاریں چلتی ہیں, خوبصورت درخت ہیں, بہت سی خوبصورتی اس کی بیان ہو کتاب میں, چلو پڑھ لیا, کچھ انٹروڈکشن ہو گیا اس جگہ کا. پھر کوئی دوست آیا وہاں سے سیر کرنے کے بعد, اس نے کہا بھائی یار فلاں میں جگہ پر گیا تھا, ہالیڈے منائی, بڑے خوبصورت جگہ تھی یہ ہے, تو میرا شوق بڑھے گا نا, تو شوق کچھ اور بڑھ گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی کتاب ہاتھ لگی تو پھر اس شہر کا اس جگہ ذکر تھا, تو شوق پھر اور بڑھ گیا. حتیٰ کوئی شوق جب پیدا ہو گیا تو اتفاق سے شوق تو پیدا ہو گیا, دل میں خواہش ہی پیدا ہوئی یار میں اس شہر کو دیکھوں. تو کوئی دوست ملنے آئے کہتا یار میں تو فلاں جگہ پر جا رہا ہوں, تو انشاءاللہ ٹکٹ بک کرا رہا ہوں اپنی, تو ہاں بڑی اچھی جگہ, تو اس میں اچھا وہاں جا رہے ہیں آپ, تو یار میرے بھی ٹکٹ بک کرا دو, میں نے اس جگہ میں بھی چلا جاؤں گا. تو ٹکٹ بک ہو گیا اور اس شوق اور ذوق نے انسان کو اس شہر میں پہنچا دیتا ہے. تو شوق پیدا کرنے کا کیا ہے, اس کا تذکرہ ہو, ذکر ہو, اس کی باتیں ہوں, تو شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور مثال دو کہ بھائی کسی انسان کی شادی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے اس لڑکی کی اس نے بڑی تعریفیں سنی, بھائی بہت خوبصورت ہے, بہت حسین ہے, بیوٹی پارلر حسین نہیں بلکہ اصل حسن ہے. تو माँ भी तारीफ कर रही है, बहनें भी तारीफ कर रहे हैं, सब खानदान वाले तारीफ कर रहे हैं, तो वो उसके दिल में एक बीवी तो शादी तो हो रही है लेकिन एक इसमें शौक पैदा हो जाएगा, है क्या चीज़ इतनी खूबसूरती की तारीफ हो रही है उसकी, तो उसमें शौक क्या होगा कि मैं उसको जल्दी देखूँ, जल्दी देखूँ है कौन, क्या हुसन है उस लड़की में, कैसा बात है, क्या इश्तियाक। जब इश्तियाक शादी हो गई जब पहुँचा तो सबसे पहले उसको ये होगा कि मैं देखूँ सी वो कितनी हसीन औरत है, इसके बारे में बात सुनी। एक और मिसाल देता हूँ आपको, समझ आ रही है बात। एक ही से आदमी को भैया एक डिश बहुत पसंद है, ये और नज़दीक ले आता हूँ बात के खाने की, भाई खिचड़ी दाल हो माशाल्लाह, गोश्त लगा हो, सब मसाले डले हों और ख्वाहिश किया, साथ में चावल उबले हों माशाल्लाह, खिचड़ी दाल हो भी माशाल्लाह, तूर की दाल बनी फर्स्ट क्लास गोश्त वाली, तो रात से बनिश हुई हो, गला हो तूर अपना बनाना भी अच्छा हो, तो इतफाक क्यों किसी दावत में चला जाता है आप ही में। अब वहाँ खाने लगाए जा रहे हैं दस्तखान पर, अब जनाब चिकन भी आ रहा है, मसाला भी आ रहा है, बिरयानी भी आ रही है, पुलाव भी आ रहा है, देख रहे हैं सब, इतफाक को देगा तो वो तूर की दाल आ गई जनाब, खिचड़ी दाल जिसको कहते हैं उसका बनी। वो जो आदमी जिसका शौक बड़ा होगा, तारीफ सुनी होगी बड़ी बेहतरीन दाल होती है, तो सबसे पहले वो जंप मार के उस दाल की तरफ जाएगा, वो क्या है उसका शौक। तो शौक इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है। अब ये जितनी मैंने आपको मिसालें दी ये सारे जिस्म की थी, मादियत की थी, जिस्म की थी बातें जितनी बताएं, शहर देखना ये भी जिस्म का ताल्लुक है, बीवी को पसंद करना ये भी जिस्म का ताल्लुक है, खाना पीना ये भी जिस्म का ताल्लुक है। आए असल की तरफ चलते हैं जो रूह है, जो असल चीज़ है हमारी, ये तो ढांचे ही ना, निकल जाना है पार हो जाना है, असल चीज़ क्या है भाई, जोर से बोलो ना,
रूह।
तो रूह की तरफ चलते हैं, रूह का क्या शौक है, उसका भी यही शौक है। रूह जब अपनी मंजिलों को पाती है तो वो भी इसी तरीके से इश्तियाक बढ़ाना पड़ता है, रूह में शौक पैदा करना पड़ता है रूह के अंदर भी। जैसे जैसे रूह के अंदर शौक पैदा होगा तो रूह की जो मंजिलें, जिस्म की मंजिलें तो यही थी ना, शहवात थी जो देख लिया, अभी सैर कर ली, औरत आ गई, खाना पीना यही है ना, सो गए। अब रूह की मंजिलें कुछ और हैं, रूह की मंजिल ये तो नहीं है खाना पीना, उसे मुतमिन नहीं होते खाने से, जैसे आप पूरी प्लेटें खा जाए रूह वहीं की वहीं ठंडी बैठी होगी, उसे क्या ताल्लुक बेचारी को होता है नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि आपने चार पांच प्लेटें खा ली, पुलाव खा लिया, आपका दिल कर रहा है चलो आज तहज्जुद पढ़ें, आज तक सुना आपने, और आदमी लंबा हो जाता है कि यार तहज्जुद कल से शुरू करेंगे, आज तो खाना ज़्यादा खा लिया, बस वो कश्मीरी चाय पी लें और थोड़ा ये कर लें, बल्कि ये ख्याल आ रहा हो खाए पिए वही हजम करें, वो भी खाने पीने से है, ऐसा नहीं। रूह की गजा तो नहीं है, रूह के गजा को बुलंद करने की रूह क्या चाहेगी, चलो यार तहज्जुद पढ़ते हैं, चलो यार सारी रात इबादत करते हैं, आज बड़ी यार मोतबर मुकदस रात है, चलो क्या है आज जागी लेते हैं, यार आज के दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे, चलो आज यार रोज़ा रखते हैं। इस चीज़ की किस चीज़ से होंगी बातें, जब इश्तियाक और शौक होगा। ज़बरदस्ती डंडे से आप करेंगे तो कर तो लेगा एक आध दिन, वो मस्जिद में घेर तो लाएंगे आप उसको, पकड़ पकड़ के कुंडी घड़गा के वो फिर स्लिप हो जाएगा, भाई भाई कहाँ चलेगा वो, जी मैं इधर, फिर भाग गया। जब रूह बेदार हो जाएगी तो कुंडी खड़गाने की जरूरत तो आपसे पहले पहुँचा होगा, क्योंकि रूह का शौक जा गया, रूह अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। रूह की मंजिल क्या है, मसाजिद है। क्या क्या है रूह की मंजिल, मस्जिद है। और जिस्म की मंजिल क्या थी, औरत थी, खाना पीना था, वहां पहुंचा दिया। अब रूह को जगाने के लिए तो कोई चीज चाहिए नहीं चाहिए, रूह को जो जगा दे वो चीज तो बड़ी ऊंची होगी, मंजिल तक पहुंचा देती है। इसका नजारा आपने देखना तो आप हरमैन शरीफ का सफर करने वालों से पूछें जब सफर करते हैं, इसकी मिसाल रूह की मिसाल आपको दे रहा हूँ। खास तौर पर मक्का मुकम्मा से जब इंसान मदीने के सफर की तरफ चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको पहुंचाए, जोर से गए फिर गए फिर गए, इस पे आशा बच्चे नहीं गए हम माशा, तो वहां तो फिर और ही शौक होता है, रंगी कुछ और होता है, आदमी तो फिर भूल जाता है मक्के को, तो फिर जल्दी सामान पैक करता, चलो भाई मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा नारे पड़े होते हैं। और जिन्होंने रूह की जौक को बढ़ते, उनको रूह की मंजिल तो है ना, अब रूह की मंजिल पे आ रहे हैं, जिसने उनको जगाए होते तो अब क्या है आप तरीका। हाय हाय, अल्लाह वाले जो होते हैं जब उस सफर पे चलने वाले होते हैं, बल्कि यहीं से उनकी तैयारी होती है, उसको रूह को शौक पैदा करते हैं, उसमें इश्तियाक पैदा करते हैं रूह के अंदर। वो क्या चीजें होती हैं, असबाब कौन से होते हैं, अल्लाह अकबर, दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं, नबी पाक में तस्करे करते हैं, खूबसूरत नातों को सुनते हैं, आप पर सलाम दुरूद भेजते हैं, तो रूह क्या हो रही है, वो इश्तियाक बढ़ रहा है रूह का। आपने देखा होगा अल्लाह वालों की शान होती है, बड़े बड़े बुजुर्गों के किस्से हमने पढ़े हैं कि जिस वक्त सफर करना शुरू करते थे ना, तो उनकी कैफियत बदल जाती थी, कैफियत बदल जाती थी, बस तस्करा होता था, बस जिक्र यार ही चलना होता था, दरूद किताबों में नबी पाक किस्से, फिर मदीने मुनव्वर की बातें, कुबा ऐसे है, फना जगह ऐसे है, नबी पाक यहाँ से गुजरे थे, वो चीज़ें ऐसी हैं, जारीन की चीज़ें, किताबें खोल के बैठ जाते हैं, चाहता है रूह जागे और फिर लुत्फ हो उसमें। और जिस वक्त इंसान सफर करता है जगा कर रूह को, तो रूह अपनी मंजिल की तरफ चलती है मदीने की तरफ, तो फिर रंग ही कुछ और होते हैं। आप ये देखें कि हम भी आने वाले खड्डे हम भी जाते हैं ना, लेकिन किसी अल्लाह वाले की हाजिरी देखें वो कैसी होती है, क्योंकि उसने रूह को तैयार किया तो उसका इश्तियाक बड़ा होता है। हमारा इश्तियाक नहीं होता, कभी किसी अल्लाह वाले को जाकर देखा टैक्सी वाले से लड़ रहा है, कोई यार क्या कर रहा है, या कोई होटल, अक्सर होटल में लड़ाई के बाद, यार तुमने कहा था ये होटल होगा, ऐसा खाना दिया जाएगा, तुम खाना नहीं दे रहे हो, बिस्तर गर्म नहीं मिला है, और यार आज ये है तो पीछे से आज यार पाए ले आता ना, आज पाए खाएंगे, अच्छा वो नहीं यार कौरमा खा लेते हैं आज, तो वो ये जनाब भागे जा रहे हैं खाने के चक्कर में, वो सब मस्जिदें जो हरम शरीफ की हैं, वो मदीना मुनव्वर नहीं पता, और पेट के लिए जाकर दुकानों में भरी लाइनें लगी होती, होता ही नहीं होता है, ये उनका जौक होता है, क्योंकि उन्होंने अपने रूह को जगाया नहीं होता, वहाँ भी जिस्म को जगाया होता है, लेकिन जिन्होंने अपने रूहों को जगाया होता है, आप देखें कभी भी वो बड़ी सी बड़ी तकलीफ भी आ जाए मदीने में, तो उनको उसमें लुत्फ आता है। हमारे हज़रत तो फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि मदीने में ख़ास ख्याल रखना, ख़ास अगर कोई टैक्सी वाला आपको 50 रियाल भी मांगे तो 5 ऊपर करके देना, खबरदार जो बहस की वहाँ किसी आदमी, उनकी नाज़ो नखरों को उठाना, उनकी नखरों को उठाना पड़ेगा तुम्हें। वो कौन थे, इसलिए कि उन्होंने शौक बढ़ाया था अपनी रूह का, इश्तियाक, जब इश्तियाक बढ़ाया तो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना चाहती थी। यानी एक बुजुर्ग हजरत रफाई रहमतुल्लाह अलैह सफर पर जब पहुंचे, देखें उनके इश्तियाक कैसे थे रूह के, जो अपनी मंजिल पे रूह पहुंच रही है, रूह की मंजिलें हैं, कितना बढ़ाया था अपने शौक जौक को, कि जिस वक्त रोज़े मुबारक पर गए तो लिखा है बात किताबों, तो जाके जब सलाम किया तो इतना ज़बरदस्त रूह का जौक और शौक बढ़ चुका था कि खुद कब्र मुबारक से नबी का हाथ मुबारक बाहर आ गया, दुनिया ने देखा, जवाब दिया वालेकुम सलाम या वलदी, मेरे बेटे सैयद थे ना, तुझ पे सलामती हो। तो ये भी एक मुकाम है, एक हमारा मुकाम है, लड़े जा रहे हैं बजा रहे थे, फोटो खींचना आते हैं आजकल, गए तो रोजे की फोटो खींच रहे थे, उसकी फोटो खींच रहे थे, उसके कड़क कर रहे हैं, कभी गुम्बद खजा की तस्वीरें खींच रहे हैं, यही करते हैं। लेकिन जिनके रूहें जागी होती हैं, जिनमें जौक पैदा होता है, उनको वहाँ कुछ नजर नहीं आता, सिवाय क्या होता है, आप अक्सर देखेंगे कि वहाँ लोग जाते हैं बस भागे, जल्दी से नमाज पढ़ी भागे, खाने का टाइम है, बस सोने का टाइम है, बस भाई वहीं बहुत गर्मी है, होटल में वहीं मुलाकात हो जाएगी। और मैंने अपने हजरत को देखा है सुबह तहज्जुद के वक्त आना, और रात को इशा के बाद उस वक्त हिलना जब मस्जिद को बंद करने वाला हो गया, उसमें भी वो आखिरी आदमी होते थे, ना उनको खाना ना पीना ना भूख, वजह यह कि इस बुलंदी पे थी, इश्तियाक में थी। जब किसी को जौक और शौक बढ़ जाए ना, जैसे कभी जिस्म को बढ़ जाए कि भाई इस औरत को देखा जाए, तो सब हदों को पार करके उस औरत का पहुंच जाता है, अंधा हो जाता है, अंधा हो जाता है उसके इश्क के अंदर। तो इसी तरह जब रूह जिंदा हो जाती है तो वो भी अंधी हो जाती है, सारे जिस्म के तकलीफात खत्म कर देती है, उसको मजा एक ही चीज में आता है, वो क्या कि कोई यार में बैठा ही रहा है। वो लोग थे जिंदा मिसाल है आपके सामने, ठीक है। तो अब रूह की बात आप समझ गए, जिस्म की बात भी समझ गए, तो रूह की असल मंजिल जो है, अगर देखना हो रूह को, ये सब बातें जो बताई हैं मनाजिल है रूह की, लेकिन असल मंजिल जो देखना हो, दुनिया में तो मस्जिद से चलती है और हरमैन शरीफ में जाके खत्म हो जाती है, यही है ना असल मंजिल, लेकिन इससे भी बड़ी मंजिल है रूह की, याद रखें। वो कब होगी, असल आजमाइश और टेस्ट उस रूह का उस वक्त होता है, इसने इसमें कितना जौक पैदा किया है, कितना जौक पैदा किया रूह के अंदर, उस वक्त पता चलेगा कब, जब मौत आती है। आरफिन की मौत, जिन्होंने अपनी रूह का जौक पैदा किया होता है, और एक हमारे जैसे इंसानों की मौत में बड़ा फर्क होता है। फर्क इस वजह से कि जो रूह है वो जागी होती है, वो अपने असल मंजिल की तरफ जा रही है, तो उसमें इश्तियाक और शौक होता है उस मंजिल का, बात समझे। और हमें मौत का डर होता है, अब क्या होगा, कबर ये और फला जो सामान आ रहा है, उधर क्या हो रहा है। सुने, एक आप मिसाल से बात बताता हूँ। नसफी रहमतुल्लाह, मजा आ रहा है मेरी बात में? नहीं यार, हर रोज नई बात मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह आपको। बोर नहीं होने देता है, ये चस्के लगते हैं 5-6 दिन जब भी आते हैं तो कल अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक ही और निकल आते हैं। तो आज तो बहुत अच्छा टॉपिक है, इश्क का टॉपिक। तो क्या हुआ, हज़रत नसी रहमतुल्लाह शिवायत किए लोगों ने इस बात पर, क्या कि जब इंसान, एक इंसान की मौत होगी, मैंने कहा ना असल मंजिल क्या है, असल इम्तिहान कब आता है रूह के ज़ौक और शौक का, मौत के वक्त। मौत की तो बहुत बातें ने सुनी, कितनी तकलीफ होती है, कैसा कुछ होता है, सख्ती का पता है, नज़ा का पता है, पता ना सबको। अब ये भी सुन लेंगे बात कि जिस वक्त अल्लाह भला करे उस आदमी का इंतकाल होने लगा, इंतकाल होने लगा, तो वो आरफीन में से था और उसने फिर रूह को जिंदा किया हुआ था, जबरदस्त हो। तो जब मगन मौत की मौत जान निकालने लगे तो चारों तरफ से जिक्र ने घेर लिया उसको। अब वो बड़ी परेशान, मैं मौत किसकी, जाऊं अंदर कैसे रूह को निकालने की, रूह को कैसे कैश करूं, हुक्म अल्लाह का है, अभी क्या करूं मैं, नहीं आने दे रहा। चारों तरफ जिक्र ने महफूज कर लिया इंसान को, मतलब मौत नहीं प्रांग सकी उस चीज को। मेरे भाई एक बड़ा अच्छा नुकता यह है, दुनिया में कैसे कैसे बलैयात और कैसे कैसे तूफान है इस वक्त, तो एक ही चीज इंसान को महफूज कर सकती है और वो अल्लाह का जिक्र है। ऐसे नुकता याद रख लेना। आज जिन आ गए जी, भूत आ गए जी, फलां आ गए, ये आ गए, इसमें ये कितने कितने आज हादसात हमारी जिंदगी में है, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने वाला है, मौत के वक्त ये हाल है तो जिंदगी में जिक्र कितनी हिफाजत करता होगा इंसान, आ ही सकता है इंसान के जो जाकिर होगा, सवाल ही पैदा होता है उस पर कोई असर हो जाए किसी चीज़ का। लाख जादू करें, लाख जिन्नात हैं, लाख कुछ हों, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, लेकिन जिक्र उनको जो है नज़दीक नहीं आ देता। यहाँ से ये सबक मिलता है। फिर क्या, वो देखा कि भाई वो तो रूह काबू नहीं आ रही, मुझे गुजारिश की अल्लाह तआला, अल्लाह किस बंदे की तूने मुझे रूह निकालने की तरफ भेज दिया, ये तो अंदर ही जा पहुंच रहा, क्या बात है, ये चारों तरफ जिक्र घेर लेता है, रूह तक नहीं पहुंच रहा है। तो अब फिर अल्लाह तआला क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, या आयत नस्मन, वो क्या आयत है कि मुतमन्ना, आ जाए मेरे पास रूह मुतमन्ना वापस, ये कुरान की तफसीर है। अल्लाह कहते हैं मलकुल मौत, तू घबरा नहीं, मैं तुझे इसकी तरकीब बताता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं देख क्या होता है, जी फरमाए, कहते तू अपने हाथ के ऊपर ना जरा मेरा नाम तो लिखना, हाय 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 लिखना अल्लाह, और ये अल्लाह सिर्फ उसके सामने कर देना, फिर देख क्या होता है। उन्होंने मलकुल मौत अल्लाह लिखा, और जैसे गया तो वो जो रूह थी वो तो तैयार थी अपने मंजिल पर जाने के लिए, असल मंजिल उस क्या थी, दीदार इलाही, वो तो उस मंजिल पर पहुंचना चाहती थी। और जब उसने देखा अल्लाह का नाम तो बगैर सब चीजों छोड़ के रूह एकदम उसके काबू में आ गई, शौक इश्तियाक ने सब हदों को पार कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने अपनी जान वापस दे दी उसके हाथ। मेरे भाइयों, अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह का जिक्र जो है, ये वाहिद इतनी बड़ी चीज है, सारी इबादत इस तरफ लेके जाती है, याद रखना। ये शौक पैदा करती है रूह के अंदर किस चीज का, दीदार इलाही का, असल मंजिल पे लेके जाती है। इतने इश्ताक हो जाता है रूह के अंदर, शौक हो जाता है कि वो मौत से नहीं डरता, बल्कि क्या है कि जल्दी हो और मैं अपने रफीक के आला से मिलूं। ये हम जैसे इंसानों के अंदर शौक होता है, शौक होता है। हजारों कहानियां ऐसी हैं सहाबा का जिंदगी में, हम तो इंतजार कर रहे हैं यार, ना उनको दुनिया का पता, ना इधर का पता, मतलब वो शौक में होती है, वो रूह होती है जिसमें, इस शौक में होती है कि जल्दी हो मेरी जान छूटे और मैं अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाऊं, अपने रब को देखूं कैसा है। تو سب سے زیادہ اگر اس مقام پر اپنی روح کو انسان زندگی دینا چاہتا ہے اور اسباب اختیار کرنا چاہتا ہے روح کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے, واحد ایک ایسی عبادت کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے اللہ والوں نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا ہے, مضبوطی سے پکڑا ہے, اور روح کو الحمدللہ وہ سبب پہنچایا ہے کہ روح کا جو پورا شوق اور ذوق جو ہے وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے ہو جاتا ہے کہ میں اپنے یار سے ملوں, میری زندگی اس کی جو ہے وہ ایک کانٹا بنتی ہے, رکاوٹ بنتی ہے ملنے کے لیے, اور ہر وقت اس کا شوق یہی چڑھتا ہے الحمدللہ. دنیا میں ہوگا تو انہیں اسبابوں کو تلاش کرتی رہے گی روح, وہ جو اسباب اللہ نے دیے ہیں, مسجد ہوگی, حرمین کے شریف کے سفر ہوں گے, قرآن کی تلاوتیں ہوں گی, تہجد ہوگی, نوافل ہوں گی, وہ مست رہتا ہے ان چیزوں میں, روح کی غذا ہے نا اس کو ملے گی. اور موت کا انتظار کرتا ہے, موت پر جو سب سے بڑی اس کی خواہش ہوگی روح کی, زندگی نہیں ہو سکتی نا, موت میں سب سے بڑی اور بڑی خواہش اس کو مل رہی ہوگی, اس خواہش کے لیے روح ہے وہ جمپ مار کے نکل جائے گی کہ سبحان اللہ میں تو آزاد پہنچوں اپنی جگہ پر. میرے بھائی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ صرف اسی لیے نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں کہ ثواب کے لیے بھی ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر, اللہ نے تاکہ یہ ایک قسم کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بچوں کو آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو کہیں گے قرآن پڑھنے چلے مدرسے میں جائے تو ٹینٹا کرتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے قرآن کی, نہیں نا پتہ, باپ کو تو پتہ ہوتا ہے, تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مٹھائی سے کام شروع کرتا ہے, آج تم مدرسے گیا نا تو تجھے میں ایک چاکلیٹ دوں گا, وہ جم مار کے پہنچ جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن کا شوق نہیں لے جا رہا, کیا لے جا رہا ہے اس کو, وہ چاکلیٹ شوق لے جا رہا ہے, وہ چاکلیٹ جو اس کو پہنچا رہی ہے قرآن تک, باپ کو پتہ ہے کہ آج تو چاکلیٹ سے جا رہا ہے, جب قرآن اندر چلا گیا تو چاکلیٹ بھول جائے گا, پھر الحمدللہ قرآن کی طرف لگ جائے گا. بیٹھے نا آفس حضرات تمہارے سارے چاکلیٹ کھا کے پڑھتے ہیں تلابی, یہ جو پڑھ کے آئیں گے تین تین پانچ پانچ چھ چھ منزلیں, ان کی چاکلیٹ ملتی ہے, کچھ نہیں ملتا الحمدللہ, کچھ نہیں ملتا. اب تو ان کو روکتا تو ان کو غصہ آتا ہے, میرے بھائی پہلے چاکلیٹ سے معاملہ آگے چلایا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ذکر پہ ثواب رکھے ہیں نا کہ رحمتیں آتی ہیں, بخشش آتی ہیں, انعامات دیتا ہوں, یہ ایسے چاکلیٹ کی طرح آدمی کو دی جا رہی ہے, اور جب چسکا لگ جائے ذکر کا تو پھر عبادات کے ان ثوابوں کو بھول جاتا ہے, اور پھر وہ اصل ذکر, اس ذکر جو ہوا نا مذکور, میرے حضرت فرماتے تھے الحمدللہ کہ مسمی سے ذات کی طرف جاؤ تب ذاکر بنو گے, نہیں سمجھے بات, کہ مسمی سے ذات کی طرف جاؤ, جس کا ذکر ہے نا مذکور, جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس کی طرف جاؤ, اس کی ذات کی طرف جاؤ, تب ہو گئے تم ذاکر بنو گے, ورنہ نہیں. تو اس چکر میں نہ رہے ہیں کہ بس اب آپ وہ لوگ تو نہیں ہے بالغ ہو گئے کہ میں ثواب بتاؤں آپ کو یہ ملے گا, اب چاکلیٹ والا معاملہ نہیں ہے, اب تو آپ میں ایسا شوق ہونا چاہیے کہ جہاں پتہ چلے ذکر ہے بھاگتی ہوئی چلی جائے آپ کی روح, کہ بھائی پہنچنا چاہیے اللہ کے ذکر میں جانا چاہیے, جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اپنا آپ کو کہیں گے ہم ذکر کرنے والے ہو گئے, ورنہ نہیں ابھی ذکر کرنے والے نہیں ہوئے. یہ ہے انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے, ایک کام کریں کہ روح کو شوق پیدا کریں, اشتیاق پیدا کریں, خوب اشتیاق پیدا کریں, کس طریقے سے ہوگا, اللہ کی باتوں کو خیال, جہاں پہنچے ہیں ہم اللہ کی وحدانیت کو دیکھیں, قرآن پڑھا پڑا ہے اس کی شان کو دیکھیں, اس جمال جلال کمال قدرت حیبت عزت بلندی اتنی انسان کے اندر چھا جائے, میرے حضرت اتنی چھا جائے کہ دوسری چیز اس کے مقابلے نہ ہو, جمال ہو تو اللہ کا جمال, کمال ہو تو اللہ کا کمال, ہر چیز جو ہو اللہ کی, جلال ہو تو اللہ کا جلال, حیبت ہو تو اللہ کی, عظمت ہو تو اللہ کی, قدرت ہو تو اللہ کی, جم جائے انسان, جب یہ بڑھنی شروع ہوتی ہیں باتیں تو کیا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے روح میں کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ذات ہے کیا, جب یہ شوق پیدا ہو گیا تو جسم کو پھاڑتی ہوئی نکل جاتی ہے موت کے وقت, اپنے شوق کے اندر کہ میں جا کے آج دیدار کروں اللہ رہے گا, صحیح ہے بات یہ نہیں, انشاءاللہ اسی لیے ہم زور شور لگا رہے ہیں الحمدللہ, اب چاکلیٹ نہیں ملے گی, اب آپ کو آنا پڑے گا ویسے ذکر, اچھا نہیں کتنے تھوڑے لوگ ہیں اپنے آدمی غائب ہو جاتے ہیں, اب ہر دفعہ زور لگانا پڑتا ہے, بھی آؤ ذکر پہ آؤ, یہ ثواب ہوتا ہے وہ ثواب, تو کہتے بھی میں شرم آتی ہے بڈھوں سے کیا ثواب بتاؤں, اب تک ان کو ثواب کا نہیں پتہ چلا, اب تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے, اس لیے یہ مضمون میرے ذہن میں آیا جو آپ کی خدمت پیش کی ہے, کچھ آزاد جو ہے وہ لیٹ آئے, حالانکہ ان کو لیٹ نہیں آنا چاہیے تھا, پتہ چلے ذکر ہے تو اتنی عمروں سے ذکر کر رہے ہیں, ان کے ماتھے میں گٹے جو ہیں گھس گئے ہیں چلتے چلتے, لیکن ادب نہیں ہے اس گھر کا, ادب کیا ہے, میں بھی تو وہیں رہتا ہوں جہاں یہ رہتے ہیں, میں بھی تو وہیں سے آتا ہوں, یہ نہیں آتا, آتا ہوں لیٹ ہونے کا مقصد کیا, अपने शेख की तो कोई बात सुनने के लिए आदमी अपने कान जान सब झावर कर देता है कि भाई मैं आज वहां कोई बात होगी तो मैं सुनू। तो ये इंतहाई दर्जी की जो है ना शुक्रिया इंसान की। अभी हो ना दावत नामा की फलाना दावत है तो अभी तो लोग आए भी तो चक्कर काटने शुरू कर देते गली में, ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ तो कहीं भी खाना पीना खत्म हो जाए। जी पहले आ गए मौलाना साहब, भाई मैं इधर से जा रहा था, मैं अगर चलो यार बैठ ही जाएंगे दोस्त आएंगे बातचीत कर लेंगे, मकसद खाना जल्दी पहुंच जाऊँगा, अच्छी सीट मिल जाए मुझे, कुर्सी अच्छी मिल जाए, जहाँ जिक्र की बात हो तो ढेलते आ रहे हैं, 10 मिनट के बाद आधी बात गुजर भी गई। किस कदर नालायकी और नाशुक्रिया, अस्तगफार करें, तौबा करें, अल्लाह ताला इनामात को खींच लेते हैं। इतनी नागवार गुजरती है अल्लाह ताला को नाशुक्री। किसके बारे में कहा है जो नाशुक्र होता है? कुफर के साथ लफ्ज आया है या नहीं? लेकिन हम इतने भी शुक्र अल्लाह का नहीं करते कि अल्लाह ताला बुला रहा है कि वहां जिक्र हो रहा है, कोई बैठ कर बात करेगा सुनेगा तो हम भागते चले जाएं, 10 मिनट पहले वहां पहुंचने की कोशिश करें कि हम इस्तकबाल करें अपने शेख का। कितना फर्क है उस मजलिस में फैज हासिल करने का। एक आदमी सफर करता है कि मैं पहले पहुंचूं, अपने शेख की ज्यारत करूं, उसका इस्तकबाल करूं, मस्जिद में 2 रकात नफिल पढ़ूं शुक्राने की, मैं जिक्र में आ गया हूं, सेहत में कायम है, मुझे सेहत ना होती मैं कैसे आता? हजारों लोग ये पीछे दफा आते अब नहीं आ सके। एक तो ये हुआ आना हुआ, एक वो उस आराम से घड़ी देखे जा रहे, अभी तो ये बात चल रही होगी, 10 मिनट के बाद चलेंगे, अभी तो ये हो रहा है कोई बात नहीं, ये हो रहा होगा। फिर जना आदि जिक्र आगे जिक्र में यादी बात में आगे बैठ गए, किसको फैज पहुंचेगा? फैज वाले देने वाली कौन जात है? कौन है? मैं या आप या कोई इंसान? कौन है? अल्लाह की जात। तो जिसके दिल में अल्लाह की अजमत इतनी हो उसको मिलेगा क्या? सिवाय धक्के खाने के मिल सकता उसको? कितने जिक्र कर ले गुनाह होते ही रहेंगे, उससे छूट ही नहीं सकते गुनाह। ये सजा है अल्लाह ताला की, वादा करते हैं अंदर जिक्र का अदब करेंगे, ऐसे मामूला जिक्र करेंगे पता चलेगा वहां कोई अल्लाह वाला आ रहा है, उसने कोई गुफ्तगू करनी है, ऐसे पहुंचे पहले पहुंचे, उसके जूते उठाएं, उसका इस्तकबाल करें, उसका दीदार करें, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला तूने ये शख्स हमारे पास भेजा है जो इतनी कर्म की बारिशें कर रहे हम पर कर रहे हैं, इतनी बातें बता रहे हैं। ये होता है अल्लाह का शुक्र। ना शुक्र होकर जिंदगी गुजारेंगे, बेशक दाढ़ी कितनी लंबे कर लें, इमामे कितनी ऊंची कर लें, कितने साफ सपड़े पहन लें, कितनी लंबी तस्वीर रख लें, लेकिन ना शुक्र को मिलता कुछ नहीं। अदब बहुत बड़ी चीज है। माफी चाहता हूँ गुफ्तगू में बात आ गई कि मुझे नागवार गुजरती है ऐसे लोगों को देखना जो बीच में आके मजलिस बैठे या मजलिस से उठ के जाए। ऐसी मजलिस से उठना भी नहीं चाहिए, अपने खा पी के वजू शजू करके बैठे, बहुत ही कोई मजबूरी हो जाए तो फिर जाए, बादब बैठे। मेरे लिए नहीं, जिस रब के जिक्र के लिए है वो बहुत बड़ी जात है। वो जिक्र के किसी लला मजनू का तो नहीं हो रहा, कि हीर रांझे का तो किस्सा नहीं आप यहां सुन रहे, कोई यहां कोई स्क्रिप्ट तो नहीं चल रहा, यहां तो अल्लाह 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 का जिक्र है। देखें आप तशरीफ ला, अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह। हाँ हम बस इसमें बड़े हैं, अपनी चीजों में बड़े इतराते हैं, हम ये हम फलां हैं, हम इतने हैं, और ये तो ऐसी आगे बैठ गया सुबह इसकी शक्ल सही है ना फलां सही है, ओए मंजिलें पा जाते हैं वो लोग दोस्तों। अदब ऐसी चीज है तुमसे आगे बढ़ा देगा उसको, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। तो अगर सही बनना है इंसान तो उसकी नेमतों पर शुक्र करो, शुक्र आते नहीं हो कि जिस वक्त मस्जिद में आओ 2 रकात तहतुल मस्जिद पढ़ो, वजू करो 2 रकात पढ़ो, वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि 2 रकात क्या है? वो 2 रकात अल्लाह ताला तेरी अजमत के सदके, तेरे जलाल और कमाल के सदके कि मुझ जैसा नाकारा गुनागार नफ्स और शैतान के अंदर डूबे इंसान को वजू की तौफीक नसीब फरमा दी, जिसके हर पानी से तूने मेरे गुनाहों को धो दिया है। तो इतना बड़ा इनाम मिलने के बाद आदमी जानवर की जानवर की तरह कुछ फर्क ही ना पड़े, फौरन झुक जाओ से देखा कहता है मेरा शुक्र करो कि तूने मुझे वजू करा दिया। अल्लाह जब इंसान 2 रकात पढ़ता है अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद हो जाता है वो शुक्र गुजार बनने की, वो आप वजू का शुक्र कर रहे हैं, मस्जिद में आप आ गए ऐसे टाइम पे मस्जिद में पहुंचेगा आप तहतुल मस्जिद पढ़ सके, 2 रकात आपने पढ़ी कि मुझे मस्जिद तक तू ले आया, मेरे कदमों को आसान कर दिया, मेरी मंजिलों को आसान कर दिया, मेरे नफ्स को तूने काबू कर लिया, हजारों रास्ते में शैतान है, मैंने खुद देखा एक दफा ख्वाब समझ लिया कष्ट में कि किस तरह शैतान मस्जिद में आदमी को आने के से रोकता है, मैंने खुद देखा ये ख्वाब। अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी उसका जोर लगाना आदमी पर और लोगों को खींचना, मैं तो हैरान हो गया कि ये असल सूरत है उसकी। और वो इंसान थे जो मेरे साथ नमाज पढ़ते थे, सारी वही मस्जिद है, सब वही लोग हैं, और मैंने देखा कि किस किस लोगों पर उसका असर हो रहा है, ताज्जुब में रह गया मैं। اللہ نے دکھائی رحمت کہ یہ دنیا تو اصل یہ چل رہی ہے. تو کیا جب انسان ان تمام بیریئروں کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آ گیا تو اپنے رب کا شکر نہ کرے؟ اس کو کہتے ہیں تو جب یہ سب شکرانہ ادا کر کے, وضو کا شکرانہ ادا کر کے, مسجد کا شکرانہ ادا کر کے, جب اصل اس پہ جائے گا فرش پہ, مجھے بتائیں اس کا مقام کیا ہوگا. میرے بھائیو, میرے بھائیو, زندگی بناؤ. وقت تھوڑا ہے, سانس بھی تھوڑے ہیں ہمارے. یہ چند باتیں آپ کی خدمت پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق سے اور آپ چلیں اپنی روح کا غذا دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کو شوق و ذوق بڑھاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ.